देखा जी उनके घर वाले कहते थे ये कुछ करता नहीं है। ज्योतिष शोध पढ़ने के बाद में कॉलेज से प्रिंसिपलों से झगड़ा कर लिया, ये हमको क्या पढ़ाएंगे, ये खुद पढ़े। भक्ति तत्व में वो कुछ नहीं जानते तो उनसे पढ़ करके क्या होगा, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया, कॉलेज में गए और उसके बाद में छोड़ दिया। ठीक, भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको एक दवा खाना खोल दिया, औषधि की दुकान। सभीों ने दो चार दिनों में ही सब दवा फ्री दे दिया और दुकान फेल हो गई, लाल बत्ती जला दिया। घर वालों ने कहा कि ये ऐसा लड़का ये कैसे अर्थ कमाएगा, कैसे अपना शादी विवाह होगी और कैसे संसार चलाएगा, अरे उस काम के लिए थोड़े आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको लगा दिया एक राजा के हैं, महाराजा के यहाँ, जो उसके लड़के का ट्यूशन करेगा। और उस समय के जमाने में उनको 300 रुपया महीना मिलता था, वो 300 रुपया आज 3000 से भी अधिक। उस समय खाना पीना रहना ये सब प्रकार की व्यवस्था, वहां पर बड़ी भारी कॉल ये थी लाइब्रेरी जिसमें समस्त वैष्णव ग्रंथ थे, बस दिन रात उन ग्रंथों को देखते और बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाते। थोड़ी देर में बच्चे ने जूता पहनना छोड़ दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, मार्किन का कपड़ा ले लिया और साधारण रूप में खाना पीना कम कर दिया और हरे कृष्ण करने लगा और तिलक लगाने लगा और गले में माला लगा लिया। उसकी मैया ने कहा लिया राज्य काज कौन देखेगा, ये हमारा एक ही बेटा, जल्दी से इसको भगाओ, 300 रुपए के बदले 400 रुपया दो, किंतु हमारे लड़के को पढ़ाएगा तो मैं 20 खाकर से मर जाऊंगी और लड़के को भी 20 खिला दूंगी। तो उनके स्वामी ने कहा इनसे आपको मैं आप 400 रुपया महीना दूंगा, अब अपने पिताजी के पास में चले जाइए और बच्चे को मत पढ़ाइए, क्योंकि घर वाले और परिवार वाले सभी लोग हमको ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको न तो पैसे की जरूरत है न पढ़ाने की, अच्छा हुआ नारद की भांति और विश्व में सर्वत्र में प्रचार करके और सब बच्चों को ही पढ़ाया करूंगा, इस बच्चे के लिए हमारा 300 रुपए के लिए इसी में हमारा केवल समय जाता, बस छोड़ करके आए और मायापुर में प्रभुपाद जी ने उनको लगा दिया जैसा कि उसने कहा। और वहीं से उन्होंने आरंभ किया, वन महाराज, अरण्य महाराज, वन अरण्य भारती गिरी, ये दशनामी जो सन्यासी होते हैं तो ये वैष्णव सन्यासी के रूप में गिरी वनारण्य वन पर्वत भारती, ये छोटे छोटे बच्चों को कितनी उम्र, 16 17 18 19 20 वर्ष की उम्र, और इनको सन्यास दे दिया। उनको सन्यास दे दिया और कहा कि घर 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 में जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण कथा का प्रचार करो और जीवों का कल्याण करो। सब ये बच्चे नादान बच्चे सुकुमार बच्चे जहां जाते थे लोग देख करके बड़े प्रभावित हो जाते थे और उन लोगों को ये सब भक्ति की बातें उन्हीं को बतलाई। तब ये प्रचार विश्व में आज हुआ, प्रभुपाद ने जो बीज बोया वो अंकुरित हुआ, पहले बंगाल में उसकी छाया पड़ी और उसकी लंबी लंबी डालियां कुछ हुई, वो उत्तर भारत दक्षिण भारत उड़ीसा पार करके मद्रास इत्यादि सर्वत्र और इधर चारों तरफ में फैल गई। इसके बाद एक लंबी डाली उसमें से एक डाली से फिर एक डाली निकली, मथुरा में वो डाली आई थी, उस डाली से एक और डाली निकली और वो डाली चली गई अमेरिका इंग्लैंड जापान लोलूहैंडलैंड इत्यादि सब देशों में फैल गई और फैल करके चारों तरफ में फल फूल से भर दिया और चैतन्य महाप्रभु की आशा को इस महापुरुष ने पूर्ण किया। आज समय अधिक हो गया है, और मुझे एक जरूरत भी है, इसलिए आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कल यदि समय होगा तो कल फिर इनके संबंध में या परसों हम लोग और इनके विषय में भी बहुत बातें रह गई हैं, हम लोग बोलेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कीर्तन कर आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उनके अपराधिक जीवन चरित्र के संबंध में हम लोगों ने कुछ कहा और श्रवण किया। तत्पश्चात आज तक हम लोग व्यासानुगत धारा व्यास पूजा और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अपराधिक जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में हम लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया। बच्चों ने भी बड़े सुंदर रूप से इसकी अभिव्यक्ति की। ऐसे ही उत्साह के साथ में उस गलती होने पर भी कोई भी परवाह नहीं, जो घोड़ा पर चढ़ाई नहीं वो गिरेगा क्या, इसलिए घोड़े पर से गिर जाने के डर से घोड़े पर चढ़ेंगे ही नहीं, कहीं हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा नहीं। मैं समझता हूं अभी आज या कल कोई कहा कि गुरु जी के पास में रहकर कभी कभी बापू और वाणी की सेवा में कुछ वैशिष्ट्य हो जाता है। बापू माने अंग सेवा और वाणी सेवा में कुछ अंतर हो जाता है। गौड़ीय पत्रिका में अपराजित सारंग गोस्वामी महाराज जी ने एक प्रबंध लिखा है। प्रभुपाद जी प्रबंध को देख करके सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। बापू एवं वाणी, बापू सेवा माने खाना पीना, अंग सेवा निकट रह करके उनकी सेवा करना, और एक होता है अंतरंग वाणी सेवा। तो इसमें वाणी सेवा का उनके वचनों को समझकर उनके हृदयंगम, उनके हृदय के जो बातें हैं, भगवान की सेवा की बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, उनको समझकर विश्व में प्रचार करना शिक्षित रूप में, और उनकी गुरु परंपरा की धारा, भागवत परंपरा की धारा को अब सुन्न रहते हुए विश्व में प्रचार करना, यह कुछ महत्वपूर्ण चीज। जैसे अभी बांके जी ने कहा, प्रभुपाद जी अपने गुरु के पास में कितने दिन रहते थे? वो तो रहते थे नवद्वीप पुलिया में, और प्रभुपाद जी मायापुर में रहते थे, किंतु सबसे सेवा किसने की? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की। प्रभुपाद जी कैसे की? वाणी के माध्यम से जो बापू की जी सेवा की, वाणी की सेवा में बापू सेवा भी अंतर्भुक्त हो जाती है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि बापू की सेवा ही नहीं की जाए, नहीं, ऐसा मत समझ लेना कभी, किंतु वाणी के वाणी सेवा के अंतर्गत बापू सेवा उसके अंतर्भुक्त, ये भी एक प्रधान कार्य, एक प्रधान सेवा है, इसलिए दोनों होना चाहिए। किंतु वाणी का महत्व कुछ और है, वाणी का संबंध कुछ स्वरूप सिद्ध भी शरीर से है। प्रभुपाद जी अपने अंगों की सेवा कराने के लिए अभिभूत हुए थे, न गौरवाणी का प्रचार करने के लिए आए थे, गौरवाणी का प्रचार करने के लिए आए थे, अभी एक छोटी सी लघु कथा भी हमारे बाके में कहा, किंतु उसमें थोड़ा सा बदल गया इधर का उधर का, थोड़ा सा समझ करके बुझ करके विज्ञान के साथ में उन बातों को कहने से जरा ठीक हो, इसलिए इसको मैं जरा और स्पष्ट कर देता हूं। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, स्थूल बुद्धि वाले अनुष्ठानिक मंत्र दीक्षा यज्ञ और उपवीत धार्मिक इत्यादि के द्वारा शिष्य होते हैं, वे बहुत अधिक जोर देते हैं स्थूल चीजों के ऊपर में अधिक जोर देते हैं। गुरु जी ने कहा अभी इनको बाहर कर दो, अभी स्वरूपानंद को पद्धर 10-20 खपट गए और लात घूसों से मरम्मत कर गुरु जी ने कहा है और मार करके निकाल दिया। गुरु जी का ये तात्पर्य था, समझना चाहिए कि इसका अंतर निहित उद्देश्य क्या है। बेचारे को समझा बुझा करके गुरु सेवा में नियुक्त करना ही उनका यह कहने का तात्पर्य था, किंतु स्थूल बुद्धि वाले व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ पाते। गोपकिशोर दास आवाजी महाराज पहले वृंदावन में थे, पूज्य कुंड में थे, राधा कुंड में थे, यहां बहुत भजन किया, मन में सोचा राधा जी की कृपा नहीं हुई, इस धाम में अपराध का विचार होता है, इस धाम में धाम का अपराध और कृष्ण नाम और राधा नाम में भी अपराध का विचार है, कृष्ण नाम करे सदा अपराध, कृष्ण बोली ले अपराधी ना हो कोटि जन्म जब करे समान असम तबुत ना पाए कृष्ण पदे से प्रेमधन नहीं होगा, एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म तक यदि गुरु के चरणों में निष्ठापूर्वक भक्ति न रहे, वैष्णवों का अनादर रहे, चित्त को स्थिर करके कर्मशः भक्ति में उन्नत न हो, तो एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्मों में प्रेम नहीं होगा। धन धान्य पुत्र और संसार की ये बातें मुक्ति इत्यादि सजीव हो जाएगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। तो इसको कहते हैं अनुष्ठानिक शिष्य, अनुष्ठान के द्वारा शिष्य। दूसरे होते हैं विद्वद्रूढ़ी शिष्य। विद्वद्रूढ़ी मैंने क्या, अपना हृदय गुरु जी को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, अनुष्ठान हो और न हो कोई इसकी परवाह नहीं, उनके भीतरी आचरण को उनके अंतर्निहित विचारों को हृदय में अनुसरण करते हैं, यथार्थ शिष्य यह है, भले ही मंत्र दिया और न दिया, इन्होंने ही ग्रहण किया वो मंत्र, ये विद्वद्रूढ़ी वाले हैं, इनके लिए अनुष्ठानिक दीक्षा की यज्ञ इत्यादि की जरूरत नहीं, तो भी जगत कल्याण के लिए दूसरों के आदर्श दिखलाने के लिए जज्जद आचरण इसकी भी कुछ हद तक आवश्यकता है, और है नहीं ऐसा नहीं, जरूरत इसकी भी है, किंतु मूल चीज की जरूरत है विद्वद्रूढ़ी से उनके आचरणों को विचारों को अपने हृदय में संपूर्ण से ग्रहण करने की भावना। यदि ये नहीं हुआ तो दीक्षा हुआ ही, दीक्षा कहते हैं किसको, दिव्यम ज्ञानम जतो कुर्यात् पापस्य संशयः, पापों को दूर करके अनर्थों को दूर करके और दिव्य ज्ञान, मैं कृष्ण का सेवक हूं ऐसा दिव्य ज्ञान जो भर दे हृदय में वो है गुरु है? तो जो गुरु अनुष्ठानिक शिष्य बने हैं वो लोग गुरु जी के ऊपरी स्थूल विचारों को लेकर और उसके लिए लड़ते मरते हैं और कहते हैं कि हम सबसे पक्के गुरु जी के शिष्य हैं। यदि गुरु जी कहेंगे तो उनके गुरु भाइयों को लाखों लोगों को हम निशाना मिटा देंगे। ये सब फूल विचार पर, वो गुरु गुरु ही नहीं है। यदि गुरु परंपरा पर विचारों को हृदय में धारण करके विश्व में प्रचार नहीं करता, जिसमें सिनागति सुनी सरोरपी सही सुना मानिना मान देना नहीं है, जीवित सम्मान दिवे अधिष्ठान, ये सब नहीं है तो गुरु कैसे। इसलिए कभी कभी शिष्यों को गुरु जी के अंतर्निहित विचारों को ग्रहण करने में भूल भ्रांति हो जाने की संभावना होती है। बाबा जी ने कहा, बाबा जी महाराज, ये तुम लोग हमारे बड़े प्यारे शिष्य हो। किसको कहा? बाबा जी लोग जो सुनते, तुम लोग ऐसा करना, हमारी बात को मानना। मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी सुगति नहीं होगी, क्योंकि मैंने कृष्ण नाम किया नहीं, भगवत भजन किया नहीं, वृंदावन से आया गौर धाम में, गौर बड़े कृपालु हैं और धाम कृपालु हैं, नाम का अपराध इत्यादि का विचार नहीं करते, इसीलिए यहाँ। किंतु विमत विफल मनोरथ हुआ, यहाँ पर भी हमारा भगवत भजन कुछ नहीं हुआ, आंख का अंधा और हृदय का भी अंधा। तुम लोग एक बात करके कृपा करके करना, रस्सी बाजार से ले आना, हमारे पैरों में बांध देना, और नवदीप भक्तों की जगह है और धाम है, उसमें मुझे रस्सी में बांध करके चारों तरफ में गलियों गलियों में, ये तो नवदीप की गलियां सुन है ना, जैसे दान गली मान गली, वैसे नवदीप की ये कीर्तन संकीर्तन का कुंज है ये सब, इसमें घींच करके मुझे चारों तरफ में खैंचते खैंचते गंगा जी में, क्योंकि अंततः मरते समय में अभिन्न वृंदावन नवदीप धाम की धूल भी हमारे अंगों में लग जाए तो हम मैं के साथ हो, कुछ तो और कर नहीं सकते। इसको समझेगा कौन, ये धाम के प्रति इनकी कितनी भारी अप्राकृत निष्ठा है, और जिसको इतनी बड़ी भारी निष्ठा है वो कृष्ण के जरूर परिकर होंगे। किंतु शिष्यों ने समझाने तथा कथित शिष्य जिनको कहते हैं नहीं समझा, सचमुच उन्होंने नारियल की मोटी रस्सी मंगाई, जब तू तो न जाए कहीं बीच में, और उनके दोनों पैरों को बांध करके नवदीप की गलियों में घुमाएंगे, जिससे बाबा जी को सर्वत्र नवदीप की धाम की धूली लगी जाए। हम यमुना में, गंगा में, राधा कुंड में स्नान करते हैं, वृंदावन की गलियों में जाते हैं, कुंजों में जाते हैं, वहां की धूली लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। यदि एक धूली का स्पर्श हो गया होता तो आज हमारी क्या स्थिति होती? जब उद्धव को वो धूली नहीं मिली और बहुत दूर से प्रणाम किया, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुं भिक्षत, बहुत दूर से प्रणाम किया, तो वो धूली हमारी इन आंखों से दिखती है कि नहीं, हमारे पैरों और शरीर से लगती है कि नहीं? यदि लग गई होती तो आज हमारी ये बहिर्मुख दशा नहीं होती। किंतु महात्माओं के हृदय में चरण धूली की तो बात क्या, जिनके चरणों की धूली है वो स्वयं राधा और कृष्ण सब समय विराजमान रहते हैं और उनकी सब समय सेवा करते हैं, किंतु दैन वस्त दैन्यता वसता उन्होंने ऐसा कहा था, तैयारी हो गई, अब वो बांधने वाले थे, इतने में सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती मायापुर में ही थे, उनको पता लग गया, उस समय टेलीफोन नहीं था, ये टेलीफोन से खबर दी गई, तो वो उनको पता लग गया, लगने के बाद ही साथ ही साथ में वो अपने शिष्य परिकरों के साथ में, जिसमें हमारे गुरु महाराज जी भी थे, और गुरु महाराज जी बड़े निर्भीक साहसी और निडर सेवक, उनके हृदय में कहीं डर नाम की कोई चीज, भय नाम की कोई चीज नहीं थी, लाखों लोगों के बीच में निर्भीक सत्य के निर्भीक वक्ता थे। और लोग ये भी आए, इनको देख करके बाबा जी लोगों ने समझा कि कुछ झगड़ा न हो जाए, इसलिए दरोगा पुलिस इत्यादि सबको बुला लिया। सब पुलिस और चार पांच दरोगा लोग आकर के बंदूक लेकर के चारों तरफ में खड़े हो गए, कहीं कोई बलवा और क्रांति और कुछ गड़बड़ न हो जाए। प्रभुपाद जी ने कहा उस सभा में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके, मेरा सबसे निवेदन है कि ये हमारे गुरु हैं और मैं जहां तक जानता हूं हमारे अतिरिक्त और किसी को शिष्य नहीं किया। यदि कोई कहता है कि मैं इनका शिष्य हूं तो ये बाल ब्रह्मचारी थे और नित्य बिना सोए बिना खाए दिन रात भजन करते थे। कृष्ण और राधा जी के और विशेष करके राधा जी के चिंता के अतिरिक्त और विश्व की कोई चिंता नहीं करते थे। तो आप लोग कहते हैं कि आप इनके चरणों को बांध करके और नवद्वीप में घुमाएंगे, मैं कहता हूं कि हमारे गुरु जी हैं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे हमारा प्राण चला जाएगा। तो हम तो गंगा के किनारे इनके दिव्य अपराकृत कलेवर को लेकर के समाधिस्थ करेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। खूब जोर से खलबली मची। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं ये कहता हूं मैं अकेला शिष्य हूं, यदि और कोई कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, कौन कौन उनके शिष्य हैं, तो पचासों लोगों ने हाथ उठा दिए, हम लोग उनके शिष्य हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ये तो बाल ब्रह्मचारी थे और सब समय भगवान का ध्यान करने वाले थे, यदि आज के रात में 6 महीने के अंदर, कितना 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, सुनो तो, 6 महीने के अंदर में कोई स्त्री की चिंता न की हो तो इनका दिव्य शरीर स्पर्श कर, मैं कहता हूं दावे के साथ में स्पर्श करते ही इनका शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। यदि उनका कोई शिष्य है तो उनका अंश्री अंग स्पर्श कोई नहीं। अच्छा मैं कहता हूं 15 दिन के अंदर तक स्त्रियों की अवैध चिंता न की हो और भजन किया हो तो इनके शरीर को स्पर्श सभी करना। अच्छा 1 सप्ताह तक सभी करना। अच्छा आज रात में भी, केवल आज रात में केवल कोई स्त्री घटित चिंता नहीं की हो और रात भर भजन किया हो तो इनका दिव्य कलेवर स्पर्श करे, किंतु कोई नहीं। यानी मैं यदि बाल ब्रह्मचारी हूं और जीवन में कभी भी कभी स्त्री की कोई चिंता न की हो तो मैं इनका दिव्य कलेवर लेता हूं और ले जाकर के समाधिस्थ मैं स्वयं करूंगा। बस जितने बाबा जी और सब लोग उपस्थित थे सब लोग मुख काली कर और वहां से चले गए। पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ी, फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने शिष्यों को हुक्म दिया जी चलो, बस उन्होंने उनको उठाया और शिष्य लोग मिल करके गंगा के किनारे हमारे गुरु जी ने उस समाधि में बहुत सा योगदान किया। ऐसे प्रतिभाशाली ये आचार्य आए थे किस लिए, अब तो कितना बजे है, 7 बजे में जा रहे हैं, 7 में इन्होंने समस्त भारतवर्ष का परिभ्रमण किया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु से मध्य संप्रदाय का संबंध क्या है इस पर अधिक जोर दिया, क्योंकि उस समय में ये उठने लगा था मध्य के साथ में हमारे गौड़ीय वैष्णवों का कोई भी संपर्क नहीं है। इन्होंने एक बात की, आजकल जो साधारण रूप में चल रहा है विचार वो शिष्य परंपरा का विचार है, गुरु परंपरा का भागवत परंपरा नहीं, गुरु परंपरा किसको कहते हैं? एक सिद्ध गुरु का दूसरा सिद्ध शिष्य गुरु बने, और फिर उसका सिद्ध शिष्य गुरु बने, और उसके माध्यम से जो जो धारा आती है इसको कहते हैं शुद्ध गुरु परंपरा धारा अथवा भागवत परंपरा, सौ धारा इसको कहते हैं, जिसमें कभी मान्या की व्यास है। व्यास के बाद में कौन आए? पहले आए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद में आए नारद जी, के बाद में व्यास जी, के बाद में किसका नाम आया? किसका नाम आया? कहाँ लिखा है? है सुखदेव गोस्वामी का नाम गुरु परंपरा की धारा में है, है? कृष्ण है ते चतुर्मुख, नारद रे मोती, नारद है ते व्यास, मध्वक है, मध्व पर क्यों चले आए? सुखदेव गोस्वामी का नाम क्यों नहीं लिया? अतः वो भागवत के वक्ता है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मायावाद की लपटानी है ना? कुछ है, भागवत के वक्ता है ठीक, अभी भागवत के वक्ता तो वही आए थे बड़े बड़े मुरारी बापू और लाखों आदमियों की भी, लाखों आदमियों की। यहाँ पर तो उनकी सभा में 88,000 ऋषि लोग थे, और यहाँ पर सुनते हैं कि 1,00,000-2,00,000 आते हैं लोग सुनने के लिए। तटस्थ रूप में कुछ कहा जा सकता है? उनको कहने को दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने जान, ये प्रभुपाद जी ने संग्रह किया किसके लिए? कवि कर्णपुर का ये श्लोक है, और कवि कर्णपुर के श्लोकों को बलदेव विद्याभूषण ने संग्रहित किया है। कौन ग्रंथ में याद नहीं? कौन सा ग्रंथ? प्रमेय रत्नावली में उसने दिया है, इसलिए सबका नाम नहीं लिया। जो व्यासानुगत जो है विशेष करके राधादास से युक्त और हमारे चैतन्य महाप्रभु के विचार के अनुसार में जो है उन्हीं को लिया। मध्वाचार्य के संबंध में लोगों ने कहा कि कुछ भेद है, उन्होंने कहा कि मध्वाचार्य का व्यक्त चारों वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण को परतत्व किसी ने नहीं माना, केवल मध्वाचार्य ने माना, और जीव और ईश्वर में भेद है इसको केवल इन्होंने ही कहा, और सब लोगों ने कहा जैसे विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, किसी ने कुछ कहा, किंतु मध्वाचार्य जी पहले आचार्य हैं। उरुकुल में वात्सल्य रस के अधिदेवता मंथन गोपाल को की प्रतिष्ठा की, और कृष्ण को परतत्व बतलाया, और श्रीमद् भागवत की टीका की, महाभारत की भी टीका की, और उनके संप्रदाय वाले लोग अभी भी जो मूल 8 गद्दियों के आचार्य होते हैं वो लोग गोपी भाव से उनका भजन करते हैं कृष्ण का। आज भी इन्हीं सब बातों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके संप्रदाय को ग्रहण किया, और श्री प्रभुपाद जी ने इसीलिए उड़ुपी में जाकर के इस तत्व का संग्रह किया, और मध्व वैष्णव आचार्य मध्व एक ग्रंथ प्रकाश किया, जिसमें उन्होंने क्यों चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्व संप्रदाय को ग्रहण किया इस पर विशेष विचार किया, और गुरु परंपरा में उन्हीं लोगों को लिया जो सिद्ध थे। गुरु परंपरा में मान लिया जैसे वंश परंपरा होती है, उसी प्रकार से शिष्य परंपरा यदि हो तो जैसे वंश परंपरा में दुष्ट लोग आ जाते हैं, जैसे विशप्रवा ऋषि के कुल में रावण पैदा हो गया तो वंश परंपरा के रूप में तो आएगा, किंतु शुद्ध रूप में नहीं आएगा। इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा में धर्म को नहीं मानने वाला जैसा तैसा व्यक्ति भी हो सकता है, छोड़ भी दिया हो, विचार भी मैं नहीं मानता हूँ कि शिष्य परंपरा, मैं उनका वंश का हूँ, उनका शिष्य हूँ, ये कहेगा। मैं केशव महाराज जी का शिष्य हूँ और केशव महाराज जी को अंगुली दिखलाता है, अंगूठा दिखलाता है, मैं नित्य लीला ओम विष्णुपा कृष्ण बावन महाराज जी का शिष्य हूँ। बावन महाराज जी से कोई संबंध नहीं रहा कभी जीवन में, हजार जन्मों में संबंध नहीं उनके भावों के साथ, मैं उनका शिष्य हूँ कहने से ही हो जाए। इसलिए गुरु परंपरा और भागवत परंपरा एक है जिसको प्रभुपाद ने प्रचलित किया और लोग सब शिष्य परंपरा लेते हैं। हम लोग शिष्य परंपरा के मध्य में नहीं जाएंगे, हम लोग किस परंपरा में आएंगे? भागवत और शुद्ध सिद्ध गुरु परंपरा की धारा। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि बहुत से आचार्य जो हैं उनका भी नाम रह गया है गुरु भागवत परंपरा, जिनको हम रोज प्रणाम भी करते हैं तो भी क्यों जैसे समानों के लोग। श्रीनिवास आचार्य इन लोगों में से केवल नरोत्तम ठाकुर जी को ले आए ना, इसका अतिरिक्त बीच बीच में कितने महापुरुष हो गए हैं उन सबको छोड़ करके। ये ऐसा एक तो सब गुरु परंपरा में सबका नाम नहीं दिया जा सकता, संभव नहीं है, लाखों करोड़ हो गए हैं कहां तक नाम देंगे। इसलिए विशेष विशेष सिद्ध महाभक्तों का नाम दिया है, इसलिए भागवत परंपरा